मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 22 नवंबर 2019 के इस AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं सोनाली तिवारी का, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को नियमित रूप से मैं कुछ सूचनाएं आप सबको दिया करता हूं। तो सूचनाएं ये हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं दिया जाता है, लेकिन जो अखबारों की कतरने हैं वो आपको शनिवार को भी एज इट इज मिलेंगी। इसके साथ ही योजना के दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र के भी आपको दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। और आपको मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर अभ्यास के लिए एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। यहाँ मैं अपने 11th बैच के स्टूडेंट को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह आपको पहला स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जा चुका है और इस सप्ताह अब दूसरा स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आपको भेजा जा रहा है। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और आज दूसरी खबरें काफी महत्वपूर्ण हैं और उनकी संख्या भी अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा ही है। एक नाम आप लोगों ने अखबार में आज पढ़ा होगा, नुमालीगढ़ का। नुमालीगढ़, हालांकि ये कोई अलग से न्यूज के तहत नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं होती हैं वो अपने लिए कहीं ना कहीं से इस तरह के रास्ते या तत्व ढूंढ के निकाल लेती हैं। नुमालीगढ़, ये जो नुमालीगढ़ है बेसिकली ऑयल रिफाइनरी है जो असम में है। याद रखिएगा, ये असम में है। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपसे भारत पेट्रोलियम के बारे में बात की थी, जिसे सरकार ने बेचने का निर्णय लिया है, राइट। आज की खबर यह है कि उसमें सरकार ने ये भी, कल भी ये बात थी कि जो नुमालीगढ़ की हमारी जो ऑयल रिफाइनरी है उसे नहीं बेचा जाएगा, उसे सरकार अलग करने की कोशिश कर अलग रखेगी। ये बात अलग है कि इसे ही फिर जो दूसरी हमारी ऑयल कंपनी है वो संभाल लें, लेकिन सरकार इसे प्राइवेट के हाथ में नहीं देगी। और उसका कारण एक ये भी है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हर साल 30 लाख मीट्रिक टन ऑयल ये डिफाइन करती है, शोधन करती है। एक बात आपको यहां और जानना होगा कि ये जो नुमालीगढ़ की जो रिफाइनरी है इसमें तीन लोग साझेदार हैं, तीन लोग। एक तो भारत पेट्रोलियम, जिसे अब जिसको बारे में सरकार बेचने की बात कर रही है, दूसरा है हमारे यहां का जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये भी पेट्रोल की कंपनी है, और तीसरा गवर्नमेंट ऑफ असम यानी कि राज्य सरकार। ये तीन लोगों की तीन लोगों का ये संयुक्त उपक्रम है। क्योंकि सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये निम्न दो कथनों का अवलोकन करें, तो आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर अदरवाइज अगर ध्यान से आप नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो पता लगेगा कि ये भारत पेट्रोलियम का तो था, तो आप उसमें निशान लगा देंगे। और यूपीएससी जब क्वेश्चन तैयार करती है और जो विकल्प उपलब्ध कराती है, तो वो बहुत अच्छे से जानती है कि स्टूडेंट के दिमाग में कौन सी बात बैठी हुई होगी और उसका फायदा वो उठा लेती है। मित्रों, कुछ दिनों से जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वहां जो संस्कृत के एक सहायक प्रोफेसर जो नियुक्त किए गए थे डॉक्टर फिरोज खान, उनको लेकर के जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में अखबारों में आप 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं। ये इसे आप एक घटना के रूप में लें, घटना के रूप में कि किस तरीके से भाषा को भी सांप्रदायिक आधार दे दिया जाता है। आप इसे इस रूप में भी ले सकते हैं कि कैसे कुछ लोगों के जो दिमाग हैं अभी भी वो मध्यकालीन मूल्यों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। आप इसे इस रूप में भी ले सकते हैं कि क्या सच में एकेडमिक जगत को भी हम जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करके देख सकते हैं या हमें देखना चाहिए। तो इस तरह की कुछ घटनाएं इसके माध्यम से आप याद करके और इनका विश्लेषण कर सकते हैं, उस लिहाज से आप कह लीजिए कि यह घटना मायने रखती है, आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। और इसी तरह का एक जो स्टूडेंट का जो आंदोलन चल रहा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आप देख रहे हैं कि फीस को बढ़ाने के मुद्दे को लेकर के देखते हैं, अभी 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, उसमें क्या निकल कर आता है। इस मुद्दे पर हम लोग अगर कभी और हो सका और परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण मुझे लगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। पिछले 2-3 दिनों से आप एक खबर और भी पढ़ रहे होंगे, और वह है कि जो सांभर झील है, जो राजस्थान की झील है, वहां लगभग 20,000 पक्षियों की मृत्यु हुई है, 20,000 बर्ड्स मर गए, जिसमें विदेशों से आए हुए बर्ड्स बहुत ज्यादा थे। इसको लेकर के पूरा देश चिंतित है, और जब उसकी जांच के लिए भेजा गया तो एक जो वायरस मिला है, ये वायरस का नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो है एवियन बोटुलिज्म नामक वायरस के संक्रमण से इन पक्षियों की मृत्यु हुई है। याद रखिए कि ये जो झील है, ये सांभर झील है, आप जानते हैं कि सांभर झील खारे पानी की हमारे देश की सबसे बड़ी झील है, और ये राजस्थान में है, ये तथ्य आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी तरह से एक और खबर है दोस्तों, वह है न्यूजियम को लेकर। न्यूजियम, ये म्यूजियम नहीं है, हालांकि इसका संबंध म्यूजियम से है, लेकिन इसके साथ आप म्यू के पहले क्या है, न्यूज, यानी कि यह न्यूज का म्यूजियम है। खबर ये इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बनी है, ये वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, और बेसिकली ये प्रिंट मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, प्रिंट मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इसका जो सबसे बड़ा काम होता था वो ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो दुनिया भर के जो अखबार हैं या डिजिटल जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके हेडलाइंस का कलेक्शन ये डेली प्रोवाइड करता था। लेकिन अब इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ये अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी तक देने की स्थिति में नहीं है, तो अब घोषणा इन्होंने की है कि दिसंबर में यह म्यूजियम बंद कर दिया जाएगा। चूंकि एक बड़ी घटना है और ये न्यूज़ वर्ल्ड की, आप कह लीजिए कि एक तरह से प्रेस वर्ल्ड की बहुत बड़ी घटना है, तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ खबरें थी जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आज के मुख्य विषय का संबंध दूरदर्शन की न्यूज से है, और यहां तक कि रेडियो की न्यूज से भी है। याद कीजिए कि कल के रेडियो न्यूज की पहली हेडलाइन क्या थी। पहली हेडलाइन थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सीएजी का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में गए थे, और उन्होंने जो आह्वान किया है कि जो कंट्रोलर, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, वो सुशासन का प्रेरक बने, कैटलिस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन का प्रेरक। अब आप देखिए कि ये जो वाक्य है, ये आज के अखबारों में प्रोमिनेंटली मुझे देखने को नहीं मिला, और किसी अखबार ने कुछ छापा हो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए अखबार अपने ढंग से चीजों को छापते हैं, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट अलग ही तरह की है, ये बात अलग है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन अखबारों से ही पूरा होता है। अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने इस उद्बोधन में और कौन कौन सी बात कही है। तो जो सीएजी का है, मान करके चलिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां बन रहा है कि वह सुशासन का प्रेरक बने, और गुड गवर्नेंस आपके जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर का एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है और इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक तो गुड गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न हो गया, और दूसरा देखिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस के बारे में। उदाहरण के तौर पर 2018 में सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ब्रैकेट में है सीएजी को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है, व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि तथा शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका प्रयोग वह कर सकता है। 150 शब्दों में आपको लिखना है। ये 2018 का एक क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आप देखिए कि सीएजी पर है। अगर 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको ये सीएजी तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपको अटॉर्नी जनरल दिखाई देंगे, और सीधे कि जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत सरकार का वकील होता है, ये मैं जानबूझ करके कह रहा हूं। और देखिए कि 2017 में किस तरह का एक प्रश्न पूछा गया है। 2017, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन एस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। अब ये देखिए कि मैंने अटॉर्नी जनरल की बात की, मैंने सीएजी की बात की, और यहां मैं पीएसी की बात कर रहा हूं, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहा हूं। ये सच पूछिए तो ये तीनों चारों एक ही श्रेणी की अलग अलग शाखाएं हैं, एक ही प्रजाति के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से एक क्वेश्चन हर साल किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाता है। तो इस लिहाज से आपको हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये आह्वान है कि सीएजी को सुशासन का प्रेरक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है 2020 के मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और अब देखिए कि अब उन्होंने कह तो दिया कि सुशासन का प्रेरक होना चाहिए, और कल डीडी न्यूज अगर आपने देखी हो तो जो न्यूज रीडर हैं उन्होंने सीधे सीधे एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन किया था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा तो है कि वो सुशासन का प्रेरक हो, लेकिन सीएजी कैसे हो सकता है? तो वो जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो जवाब दिया है उसमें सुशासन का प्रेरक का उत्तर नहीं है, बाकी दूसरी चीजें उन्होंने कही हैं, और वास्तव में इसका उत्तर उतना आसान भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ और बातें कही हैं उसमें सच पूछे तो आंसर के काफी पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं, स्ट्रेट तो नहीं लेकिन इसके आधार पर आप आंसर बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, उन्होंने एक बात कही कि जो सीएजी है उसे तकनीकी तंत्र का विकास करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का विकास करना। देखिए, सीएजी का रोल क्या है? सबसे बड़ा रोल है ये कह लीजिए कि हमारे यहां जो पब्लिक का जो पैसा है, जो धन है, उसका वो संरक्षक है। जैसे हमारे यहाँ जो उच्चतम न्यायालय है वो एक तरह से संविधान का कहीं ना कहीं संरक्षक है, तो ये जो पब्लिक का जो पैसा है इसका संरक्षक है सीएजी। हम लोग अभी उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि समय उतना नहीं है। तो सीधी सी बात है कि इस पैसे का दुरुपयोग न हो इसके लिए वो तकनीकी तंत्र का विकास करे, तो आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? फिर उन्होंने कहा कि सीएजी को आंकड़ों एवं प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रहना है। देखिए, सीएजी क्या करता है कि जो सरकारी धन खर्च होता है, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य सरकार का हो या पब्लिक सेक्टर्स का हो, वो उनकी लेखा की जांच परख करता है। वो केवल दो चीजें देखता है। नंबर वन, कि पैसा खर्च करने के लिए जो प्रक्रियाएं बनाई गई थी उसी प्रक्रिया के तहत खर्च किया गया है या नहीं। दूसरा यह कि जितना धन दिया गया था उतना ही धन उसी मद में खर्च किया गया है या नहीं, और मितव्ययता के साथ खर्च किया गया है या नहीं। तो यह हो गया उसके आंकड़े और प्रक्रियाओं तक अपने को सीमित रखना, और सच पूछे तो सीएजी ने अपने आप को यहीं तक सीमित रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने आप इस दायित्व को बढ़ाइए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सीएजी का काम है अब जो हो गया है वो संपूर्णता में काम करने की जरूरत है, केवल आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं, वो एक संपूर्णता। तो यहां संपूर्णता किसकी संपूर्णता है? मतलब कि जो एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या जो पब्लिक जो पैसा है उसका सही तरीके से उपयोग होने के लिए जो जो भी बातों की, जिन जिन बातों की जरूरत है, उनका दायित्व अब सीएजी निभाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो सीधे सीधे आपके आंसर के पॉइंट हैं। पहला तो यह कि सीएजी अब थिंक टैंक के रूप में भी काम करे, एक विचार समूह के रूप में काम करे, मतलब विचार भी करे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, कैसे हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। उन्होंने आंकड़ा दिया कि हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए केवल गलत हाथों में जाने से बचाया है, चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से हो, डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से हो, 1.5 लाख करोड़ रुपए बचाया है, और ये टेक्नोलॉजी के जरिए बचाया है। तो सोचे सीएजी कि कैसे वो इसमें और मदद कर सकती है, तो थिंक टैंक का काम करे। दूसरा वो है कि डेटा का वो विश्लेषण भी करे, एक डेटा विश्लेषक बने, उसके पास जो भी डेटा आते हैं उनका विश्लेषण करके वो कुछ उपाय सुझाए, कुछ विचार सरकार के सामने रखे। नो डाउट कि जो सीएजी हैं वो वही काम करेंगे जो संसद अपने एक्ट के द्वारा उन्हें प्रोवाइड करेगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, यहां मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे टीएन सेशन साहब ने चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को एकदम जनता की निगाह में बहुत ऊंचा उठा दिया था, उसी तरह से सीएजी की प्रतिष्ठा को वो बहुत ऊंचा उठाने वाले थे टीएन चतुर्वेदी जी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, जो आईएएस ऑफिसर थे। और मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे उनका स्नेह मिला, क्योंकि वो थोड़े से लिटरेचर को पसंद करते थे, तो काफी मुझे उनका स्नेह मिला है टीएन चतुर्वेदी। और वो जब सीएजी थे तो बोफर्स स्कैंडल अगर आपने सुना हो, बोफर्स तोप की खरीदी की गई थी स्वीडन से, उसकी सीएजी ने जांच की थी, और सीएजी ने जांच करने के बाद बताया था कि इसमें दलाली ली गई है। फिर जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसकी चर्चा अभी मैंने की, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने फिर इस मामले को मतलब सामने वो लेकर के आई, और इसके बाद ये मुद्दा इतना आगे बढ़ा, कहा जाता है कि इसके बाद वो राजीव गांधी जो समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कि कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई। और इसके बाद देखिए कि फिर आप जो कोयला घोटाला सुनते हैं, ये जो कोयला घोटाला है और जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, जनता के सामने लाने का काम सीएजी ने ही किया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ही किया है, और उस समय विनोद राय सीएजी हुआ करते थे, और मेरा सौभाग्य है कि उनसे भी मेरी बातचीत हुई इन्हीं खासकर मामलों को लेकर के हुई। तो दोस्तों आप देखिए कि सीएजी कितना बड़ा काम कर सकता है अगर ब्यूरोक्रेट्स को या राजनीति को ये लगेगा कि नहीं, हमारे गलत कारनामे सीएजी के माध्यम से किसी दिन जनता के सामने आएंगे और उससे तो हमारा पूरा का पूरा भविष्य खत्म हो सकता है, तो डेफिनेटली वो ऐसे कदम उठाने से अपने आप को बचाएंगे। तो इस तरीके से वो गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा हो सकता है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस आज इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और खासकर मैं अपने ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनमें से बहुत से स्टूडेंट ने, जो मैंने उनसे कल एक होमवर्क के लिए कहा था, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। और मित्रों मैं चाहूँगा कि जो हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास के नहीं हैं, वे भी एक सक्रिय रोल निभाएं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स उनका होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेटरी। दोस्तों ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद, और उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अनु पांडे हापुड़ उत्तर प्रदेश, अलका चंद्र पंजाब, अंशिता मेघ राजानी भोपाल, अभिषेक रंजन रांची झारखंड से, भीमेश कुमार, बलबीर सिंह रामपुर उत्तर प्रदेश से, अनीश अहमद अमेठी उत्तर प्रदेश से, मोहित पालीवाल जयपुर से, कुंदन कुमार न्यू दिल्ली से, संदीप चौहान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, आदित्य गुप्ता इलाहाबाद से, संजय साहू बागबाहरा छत्तीसगढ़ से, सूर्य प्रकाश पटना से, और दीपक आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही 2 दिनों की इजाजत लेते हुए आप सब से विदा चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। सोमवार को फिर मुलाकात होगी और फिर बातें करेंगे। नमस्कार।